ये आकाशवाणी है। अब आप फरहतनाज से समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में संयुक्त अरब अमीरात के युवराज शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से वार्ता की। उन्होंने दोनों देशों के बहुआयामी संबंधों के बीच नए उभरते क्षेत्रों में व्यापक रणनीतिक साझेदारी को सुदृढ़ करने पर चर्चा की। इस दौरान 5 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। इनमें 12 का परमाणु संयंत्र के संचालन और देखरेख के संबंध में अमीरात न्यूक्लियर एनर्जी कंपनी और न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के बीच समझौता शामिल है। अबुधाबी नेशनल ऑयल कंपनी और इंडिया ऑयल कॉरपोरेशन के बीच दीर्घकालीन प्राकृतिक गैस की आपूर्ति पर भी समझौता हुआ। युवराज ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भी कल मुलाकात की। राष्ट्रपति ने दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक घनिष्ठ और मैत्रीपूर्ण संबंधों की सराहना की। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत गजा में शीघ्र युद्ध विराम का समर्थन करता है। रियाद में कल भारत खाड़ी सहयोग परिषद की पहली मंत्रिस्तरीय बैठक में डॉ जयशंकर ने आपसी बातचीत के माध्यम से समाधान पर बल दिया। डॉ जयशंकर ने कहा कि भारत आतंकवाद की निंदा करता है। उन्होंने कहा कि किसी भी कार्रवाई में मानवीय कानून के सिद्धांतों को ध्यान में रखा जाना चाहिए। वस्तु और सेवा कर परिषद ने कैंसर की दवाओं पर जीएसटी की दर 12% से घटाकर 5% करने का निर्णय लिया है। नई दिल्ली में कल वस्तु और सेवा कर परिषद की 54वीं बैठक में यह निर्णय लिया गया। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन की अध्यक्षता में हुई बैठक में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी तथा राज्यों के वित्त मंत्री भी शामिल हुए। श्रीमती सीतारामन ने कहा कि कैंसर की दवाओं पर जीएसटी दर कम करने का उद्देश्य इस रोग के उपचार में आने वाले खर्च को कम करना है। उन्होंने कहा कि नाश्ते की चुनिंदा सामग्री पर भी जीएसटी 18% से घटाकर 12% कर दिया गया है। वित्त मंत्री ने बताया कि परिषद ने जीवन और स्वास्थ्य बीमा पर कर की दर में कटौती पर विचार करने के लिए मंत्रियों का एक समूह गठित करने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य बीमा पर जीएसटी दर में कमी लाने पर मंत्रियों का समूह इस वर्ष अक्टूबर के अंत तक अपनी रिपोर्ट सौंप देगा और नवम्बर में होने वाली बैठक में दर में इस पर निर्णय लिया जायेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से पद्म पुरस्कारों के लिए प्रेरक हस्तियों को नामांकित करने का आग्रह किया है। नामांकन awards.gov.in पर किए जा सकते हैं। नामांकन की अंतिम तिथि 15 सितंबर है। प्रधानमंत्री ने अब तक कई नामांकन प्राप्त होने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि पिछले दशक में सरकार ने जमीनी स्तर के अनगिनत लोगों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया है और पुरस्कार विजेताओं की जीवन यात्रा ने अनेक लोगों को प्रेरित किया है। जम्मू और कश्मीर में आगामी विधानसभा चुनाव 2024 के दूसरे चरण के लिए 6 जिलों की 26 विधानसभा क्षेत्रों में नामांकन पत्र वापस लेने का आज कल अंतिम दिन 27 उम्मीदवारों ने अपने नामांकन वापस लिए। दूसरे चरण में होने वाले 26 विधानसभा क्षेत्रों के लिए अब 239 उम्मीदवार चुनाव मैदान में रह गए हैं। मतदान 25 सितम्बर को होगा। कोयला मंत्रालय ने नई दिल्ली में कोयला सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की कॉरपोरेट सामाजिक जिम्मेदारी गतिविधियों की मध्य वार्षिक समीक्षा बैठक आयोजित की। बैठक में सीएसआर के अंतर्गत शुरू किए गए उपायों की प्रगति का आकलन करने, समुदायों पर उनके प्रभाव का मूल्यांकन करने और उन्हें सरकार के दिशा निर्देशों के अनुरूप बनाने पर विचार किया गया। इसमें स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, पर्यावरण, कौशल विकास और आजीविका जैसे क्षेत्रों में सीएसआर परियोजनाओं के कार्यान्वयन की समीक्षा की गई। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स आज नई दिल्ली में एक समर्पित उपयोग निवारण क्लिनिक टीसीसी शुरू करेगा। इसका उद्देश्य भारत में तंबाकू के इस्तेमाल से आने वाली स्वास्थ्य चुनौतियों का समाधान करना है। जर्मनी ने अनियमित प्रवासन से निपटने और नागरिकों को इस्लामी चरमपंथ जैसे खतरों से बचाने के लिए देश की सभी भूमि सीमाओं पर सख्त नियंत्रण लगाने की योजना की घोषणा की है। कल एक वक्तव्य में गृह मंत्रालय ने कहा कि यह नियंत्रण 16 सितंबर से शुरू होगा और पहले 6 महीने तक चलेगा। मौजूदा चैंपियन भारत ने कल चीन के हुलुनबिर में पुरुष एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी टूर्नामेंट के अपने दूसरे मैच में जापान को पराजित कर जीत दर्ज की। इससे पहले 4 बार के चैंपियन भारत ने अपने पहले मुकाबले में मेजबान चीन को 3-0 से हराया था। हरमनप्रीत सिंह की अगुवाई वाली भारतीय टीम का मुकाबला कल पिछले उपविजेता टीम मलेशिया से होगा। टूर्नामेंट की शीर्ष 4 टीमें 16 सितंबर को होने वाले सेमीफाइनल के लिए क्वालीफाई करेंगी।